ओम शांति। इस सत्र में हमारे बीच में है आदरणीय ललित भाई जी, जो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सचिव भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं और बहुत बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाल के हमारे बीच में आए। इसके तुरंत बाद इनको अहमदाबाद निकलना, तो मैं आदरणीय दीदियों से निवेदन करूंगा कि भाई साहब का स्वागत करें, सम्मान करें। तब तक मैं भाई साहब का परिचय दे दूं और आपके करतल ध्वनि से कार्यक्रम की रौनक बढ़ती है और ये भी पता लग रहा है कि आप जल्दी जल्दी भोजन करके कार्यक्रम में आए, इसका मतलब आपको बहुत आनंद आ रहा है। तो ललित भाई साहब प्रोफेशनली सीए हैं और इनका विषय है प्योर मनी इकोनॉमिक्स, पवित्र धन का अर्थशास्त्र, क्योंकि धन आजकल सारी चीजों में विशेष हो गया है। तो इसलिए आज के सेशन में हम लोगों को एनलाइट करेंगे भाई साहब। और भाई साहब यूथ के लिए बहुत डेडिकेटेडली सेवाएं देते रहते हैं, 500 से ज्यादा लेक्चर इन्होंने जीएसटी पे और टैक्स रिलेटेड इश्यूज पे दिए हैं, पूरे देश भर में लगभग हर प्रांत में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। बिजी शेड्यूल के बाद एज ए ऑडिटर आप यूट्यूबर भी हैं, आप कविताएं भी लिख लेते हैं, आप निबंध भी लिख लेते हैं और मल्टी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हैं ललित भाई साहब। तो आज के इस कार्यक्रम में हम करतल ध्वनि से भाई साहब का स्वागत करते हैं और मैं बीच में से जल्दी से हट जाता हूं। आदरणीय ललित भाई साहब,
ओम शांति। दो मिनट के लिए हम थोड़ा एकाग्र होकर एक यात्रा पर चल रहे हैं। मैं यहां से आपको कुछ सुनाऊंगा जिसका चित्र आपके मन में आपको बनाते जाना है। छुट्टी का दिन है और सुबह में नाश्ता करके अपने पुराने कॉलेज के दोस्तों की याद आई तो मैं दोस्तों से मिलने के लिए गया। सबसे पहले मेरे प्रिय मित्र हरेंद्र के घर गया। जब उसकी कोठी के बाहर पहुंचा तो उसकी कोठी देखकर मैं दंग रह गया, जैसे कि किसी राजा के महल की तरह। 20 सालों तक मैं उससे मिला नहीं था। जब मैं उसके अंदर गया तो मुझे वहां के वाइब्रेशन में ऐसी फीलिंग आई कि जैसे खुशी के बजाय थोड़ा निराशा और गम का वातावरण हो। हरेंद्र के साथ बातचीत करते हुए पता चला कि कुछ समय पहले आपसी मनमुटाव के कारण उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी और कोविड के दौरान उसका बच्चा वो दुनिया छोड़ के चला गया था। उसका जो एक सबसे कॉन्फिडेंशियल एम्प्लॉई था वह करोड़ों रुपये का घोटाला करके उसकी कंपनी छोड़ के चला गया, उसकी फार्म जो थी वो छोड़ के चला गया। इस प्रकार से उसके कारण जो उसकी वो कोठी है उसको भी गिरवी रखनी पड़ी थी। तो उसकी बातचीत से मुझे ऐसा लगा कि इसके जीवन में अभी काफी दुख और कठिनाइयां है। मन में उसके प्रति शुभकामनाएं रखते हुए कि उसका जीवन इन चुनौतियों से पार करके आगे बढ़े, मैं वहां से निकला और अपने कॉलेज के समय के ही दूसरे मित्र विजेंद्र के घर गया। 3 बेडरूम हॉल किचन का एक अच्छा सा फ्लैट था उसके पास, लेकिन फ्लैट में प्रवेश करते ही एक सुकून अनुभव हुआ। उसकी पत्नी नारियल पानी लेके आई मेरे लिए, उसके बच्चे आए, नमस्ते किया, चरण स्पर्श करके फिर वो पढ़ने बैठ गए। उनसे बातचीत में भी बहुत खुशी वाली बातें उसने सुनाई कि जीवन कैसे शांति से, खुशी से, आनंद से गुजर रहा है। उसके लिए भी शुभकामनाएं करते हुए मैं वहां से निकला तो मेरे मन में पुरानी बातें याद आने लगी कि कैसे कॉलेज के दिनों में पहला मित्र जो हरेंद्र है वो पढ़ने में नंबर 1 था, बहुत होशियार था और उसका लक्ष्य था कि मैं डॉक्टर बनूं और खूब पैसे कमाऊं, और वो बना और खूब पैसे भी कमाए। परंतु जीवन में जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी जो मिलनी चाहिए, जिसके लिए ये सब करना है, वह दिखाई नहीं दे रही थी। और दूसरा मित्र विजेंद्र, वह एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन कॉलेज दिनों से ही उसके मन में सेवा भावना थी और सबको सहयोग करने का भाव उसके मन में रहता था और वो उसकी आदत सी बन गई थी। और आज वो एडवोकेट था, पैसे भले उसके पास हरेंद्र जितने नहीं आए थे, लेकिन जितने थे उसमें वो बहुत खुश था, आनंद था, समाज सेवा भी करता था और अपना जीवन बहुत अच्छी तरह वो गुजार रहा था। अब सवाल आता है कि इन दोनों ही परिस्थितियों में, ये परिस्थितियां मेरे दो मित्रों की ही है ऐसा नहीं है, लेकिन आप भी अपने आसपास नजर डालेंगे तो आपको भी ये परिस्थितियां अपने आसपास दिखाई देगी। आपको भी महसूस होगा कि ऐसा ही कुछ आपने भी कहीं देखा है, अनुभव किया है। तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसी क्या शक्ति है जो जीवन को दुखों से भर रही है या जो जीवन को सुखों से, आनंद से भर रही है? और इसी पॉइंट को लेकर हम पवित्र धन की चर्चा करेंगे, जो आज का हमारा विषय है, प्योर मनी इकोनॉमिक्स, पवित्र धन के अर्थशास्त्र, उसकी हम चर्चा करेंगे। आप सभी लीगल प्रोफेशन से विशेष बिलोंग करते हैं और जहां धन का बहुत ज्यादा कनेक्शन है, ऐसी स्थिति में आपने भी अनुभव किया होगा कि धन वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। धन एक ऐसी शक्ति है जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है, जीवन के हर पहलू वो प्रभावित कर रही है। धन एक साधन है, साध्य नहीं है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ओनली, नॉट द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ। परंतु वह साधन इतना प्रभावशाली है जो लक्ष्य को ही प्रभावित कर देता है, इतना प्रभावशाली है। जीवन में कई साधन है, तन है, मन है, धन है, संबंध है, संकल्प है, हमारे रिलेटिव्स हैं, स्थान है, कई साधन होते हैं। परंतु उसमें भी जो धन का साधन है ये बहुत बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि ये कई फॉर्म में है, तो इसकी जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव कहां से शुरू होता है? ये प्रभाव शुरू होता है धन से, जो हम अन परचेज करके यूज करते हैं। तो धन का सबसे बड़ा प्रभाव अन्न पर पड़ता है कि जो अन्न हम खाते हैं वो हम किस प्रकार के धन से हमने कमाया हुआ है। आपने, आप में से किसी की उम्र 50 प्लस है, आपने देखा होगा कि आपके बचपन में उतनी धन की मारामारी नहीं थी लोगों के जीवन में। लोग धन से ज्यादा संबंधों को महत्वता देते थे। लेकिन इन 50 सालों में धन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, संबंधों से भी ज्यादा, स्वास्थ्य से भी ज्यादा, और हर किस चीज से भी ज्यादा धन का महत्व हो गया। उसके पीछे कारण क्या है? कई कारण है, लेकिन एक मुख्य कारण जिस पर मेरा मंथन चला और मुझे विश्वास है कि आप भी उसके साथ एग्री होंगे, कि पिछले 50 सालों में होटल में खाने का कल्चर बढ़ा है। एग्री? हाथ खड़ा करें अगर आप एग्री हैं तो। तो होटल में खाने का कल्चर बढ़ा है, इससे धन कमाने पर क्या, ये कैसे, इसका कोरिलेशन क्या है? व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन दिस टू थिंग? आप होटल में खाने जाते हैं, अच्छा भोजन बनाते, सात्विक भी, सात्विक का मतलब स्वच्छता के साथ भी बनाया हुआ होता है, परंतु पीछे भावना क्या होती है? भावना क्या होती है? एक नई होटल बाजू में खड़ी करनी है, वो टारगेट सामने होता है और उसके साथ वो बिजनेस चल रहा होता है, चेन ऑफ होटल्स बनानी होती है। हर शहर में इस नाम का रेस्टोरेंट हो, होटल हो, उस लक्ष्य के साथ काम कर रहे होते हैं। माना अधिक धन कमाया जाए उस भावना के साथ वो भोजन कराया जाता है, और उस भोजन के साथ वो भावना भी हमें मिलती है। भोजन पैसे देके हम करते हैं, भावना फ्री में साथ में मिलती है, एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम है, तो भावना साथ में मिलती है और उससे वो भावना हमारे अंदर भी प्रबल होती जाती है। इसीलिए तो कहते हैं जैसा अन्न मैसा मन, तो उस अन्न का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। आज प्रसाद एक छोटा सा टुकड़ा होता है प्रसाद का, लेकिन उसे स्वीकार करते ही मन में कितना एक अहोभाव पैदा होता है। छोटा सा ही होता है जो शायद पूरा अंदर जाता भी नहीं है। आप मंदिर जाते हैं, चरणामृत देते हैं, हाथ में चार बूंद पानी होता है, लेकिन एक अहोभाव होता है उसके पीछे। तो जो भी हम स्वीकार कर रहे हैं उसके पीछे का भाव हमारा भाव बनता जाता है। जब बार बार वो भाव हमारे जीवन में आता है तो वो हमारा भाव बनता जाता है, और वो जो हमारा भाव बनता है वो ही फिर स्वभाव बन जाता है। वास्तव में स्वभाव अलग है, जो आज आपको सवेरे राजयोग के सेशन में बताया गया था। बताया था ना आत्मा का स्वभाव, सात गुण बताए थे आत्मा के, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये आत्मा के सात गुण, ये हमारा ओरिजिनल स्वभाव है। परंतु ये जो हम अन्न स्वीकार करते हैं और अन्न के समय का जो भाव होता है वो हमारा भी भाव बनता जाता है। तो जैसा हमने कमाया वो फिर हमने खाया भी सही अन्न के रूप में, और उसका प्रभाव मन पर पड़ा, और मन जैसा हुआ आपने आज के सवेरे के सेशन में ही देखा, आत्मा की तीन शक्तियों में मन, बुद्धि, संस्कार, तीनों है ना। तो मन क्या करता है, सोचने का काम करता है, बुद्धि निर्णय देती है, और फिर हम कर्म करते हैं वैसा हमारा संस्कार बनता है। तो जो मन के भाव पैदा हुए उन भावों के आधार पर हमारा व्यवहार होता है, कर्म होता है, संस्कार बनते हैं, और वही हमारे सुखों और दुखों का कारण बनता जाता है। सो देर इज ए डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द मनी वी अर्नड, मनी वी स्टोर्ड, मनी वी स्पेंट एंड आवर परपेक्चुअल हैप्पीनेस। एक होती है टेम्परेरी खुशी, एक होती है परमानेंट खुशी। टेम्परेरी खुशी किसको कहते हैं, जैसे आपने गुलाब जामुन खाया, टेम्परेरी खुशी मिली, अच्छा लगा, एक और खाया, क्योंकि अनलिमिटेड डिश थी इसलिए तीसरा भी खा लिया। अब क्या होगा, रात को फिर इंडाइजेशन, फिर खट्टी डकारे, फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। तो जो थोड़े समय की खुशी थी वही दुख में बदल गई। तो उसको सिंपल लॉजिक में समझें। मैं ये पॉइंट इसलिए आपको समझा रहा हूं कि अल्टीमेटली हमारे जीवन का लक्ष्य, आप चाहे जो भी कर रहे हैं, जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य हमारा है कि हम सदा खुश रहें। नए फ्रेंड भी बना रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन में है, लेकिन हम चाहते सदा खुशी है। तो जब हम सदा खुशी चाहते हैं तो सदा खुशी को समझ भी लें। तो टेम्परेरी खुशी का क्या मतलब है, जिसका आधार टेम्परेरी है वो खुशी भी टेम्परेरी होंगी। आधार मतलब मित्र समझ लिए, मित्र संबंधी। आप कहेंगे मित्र संबंधी टेम्परेरी कैसे होते हैं, पहले नहीं थे वो बने, और बनने के बाद वो कब वापिस बदल जाएंगे वो भी कह नहीं सकते। सो टेम्परेरी, सदा एक भय रहता है कहीं नाराज नहीं हो जाए, कहीं छोड़ के नहीं चला जाए। उस टेम्परेरी खुशी के पीछे वो भय सदा हमारे साथ रहता है। और परमानेंट खुशी, जिसका सोर्स परमानेंट हो, और जब हमने अपने को आत्मा समझा तो ये हमारा स्वगुण है खुश रहना, और कनेक्शन अगर उस परमात्मा से हो जाता है जिसको कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, जो सदैव है, कभी नहीं बदलता है, उसके साथ आप जब यहाँ तीन दिन, आज तो आपका पहला दिन है लेकिन जो तीसरा दिन राजयोग का सेशन होगा उसमें उसको आपको काफी विस्तार से बताया जाएगा कि कैसे उस सोर्स ऑफ एनर्जी से कॉन्टेक्ट हो जाता है हमारा इजी वे में, और कैसे हमें परमानेंट खुशी मिलती है। तो ये धन के बारे में भी यही है कि अगर हमने उस धन का कमाने में, संग्रह करने में और खर्च करने में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किया, ये तीनों ही प्रोसेस, तो वो हमारे लिए शांति, प्रेम, आनंद, खुशी लेकर आएंगे। और कमाना, संग्रह करना और खर्च करना, ये तीनों ही नेगेटिव रीति से हुए, कहीं भी इसमें नेगेटिविटी इन्वॉल्व हुई तो ये हमारे लिए निराशा, दुख, अशांति, भय और विनाश लेके आएगा। ये बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। आप कहेंगे ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्या है, हम कैसे समझें कि ये पॉजिटिविटी से कमाया हुआ है, हम कैसे समझें कि ये नेगेटिविटी वाला है। तो नेगेटिविटी वाला है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, वैरभाव, घृणा, आलस, अलबेलापन, ये जो विकार हैं, इन विकारों से प्रभावित होकर हम अगर ये धनोपार्जन करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं नेगेटिविटी का अंश है, और वो हमारे लिए अप्रिय चीजें ला सकती है जीवन में। और सबके प्रति कल्याण की भावना के साथ जो धनार्पार्जन करते हैं वो पवित्र धन है, इसमें सबके प्रति कल्याण की भावना है और वो हमारे लिए सुख, शांति, आनंद लेके आएंगे। ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, इसको मैं और थोड़ा सरल शब्दों में आपको समझाना चाहता हूं। आपने सभी ने मैथमेटिक्स तो पढ़ी ही है। मैथमेटिक्स का एक इक्वेशन मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं आपको। प्लस इनटू प्लस इज इक्वल टू, बोलिए, प्लस इनटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, और माइनस इनटू माइनस इज इक्वल टू, वो भी प्लस, प्लस इनटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस इनटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। अब यहां प्लस हम पॉजिटिविटी को गिनते हैं, माइनस नेगेटिविटी को गिनते हैं। दो प्लस की बात की हमने और दो माइनस की बात की। दो प्लस कौन से हैं, जो हमें करना है। एक प्लस है जो हमें करना है और दूसरा प्लस है जो हम करते हैं। जो हमें करना है वही हम करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। उसका रिजल्ट क्या है, प्लस है। जैसे सवेरे जल्दी उठना है, प्राणायाम करना है, योगासन करना है, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करना है, मीठा बोलना है, सत्य बोलना है, नम्र व्यवहार करना है, ये करना है, और यही अगर हम करते हैं तो पॉजिटिव हो गया। और जो हमें नहीं करना है, पहला नेगेटिव जो हमें नहीं करना है, दूसरा नेगेटिव जो हम नहीं करते हैं, तो माइनस इनटू माइनस इज इक्वल टू, वो भी प्लस हो गया। जो हमें नहीं करना है वो हम नहीं करते हैं, वो भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। क्या नहीं करना है? चलो हमको स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, झगड़ा नहीं करना है, नहीं करना है, ये गुस्सा नहीं करना है, और हम नहीं करते हैं, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब जो हमें करना है और नहीं करते हैं, प्लस इनटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, वो नेगेटिव हो गया कि जो करना है, सवेरे उठना है, प्राणायाम करना है, लेकिन 8 बजे उठ रहे हैं, फटाफट चाय पी और तैयार हो गए ऑफिस के लिए, अब ये नेगेटिव हो गया कि जो करना है वो नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करना है वो कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, वो भी नेगेटिव अप्रोच हो गई। तो पॉजिटिव माना जो हमें करना है वो कर रहे हैं, जो नहीं करना है वो नहीं कर रहे हैं। इस अप्रोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, ये एक सरल भाषा में आपको बताया, मोटा मोटा रूप, कई इसकी डेप्थ है, वो तो आप जैसे जैसे इस आध्यात्मिक ज्ञान के संपर्क में आते जाएंगे, इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल अपनाने की प्रयास करते जाएंगे, ऐसे ऐसे ये चीज और आपको क्लियर होती जाएगी, लेकिन मोटा मोटा रूप ये है। तो ये जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे जीवन में पवित्र धन का आगमन होता है, और पवित्र धन अपने साथ सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी लेके आता है। एक्चुअली धन अच्छा होता है या धन बुरा होता है ऐसा नहीं होता है। धन तो एक साधन है, जैसे चाकू है। अब घर में एक नाइफ रखा हुआ है, चाकू किचन में, किसके लिए रखा है? फल काटने के लिए, सब्जियां काटने के लिए घर में चाकू है। लेकिन अगर किसी की अंगुली कट गई उससे, तो क्या चाकू बुरा हो गया? चाकू बुरा नहीं हुआ, उपयोग में ध्यान नहीं रखा हमने, या किसी ने उससे, उस चाकू से किसी पर हमला कर दिया, तो चाकू बुरा नहीं हुआ, लेकिन चाकू का उपयोग जो है वो हमने बुराई के लिए कहा। तो ऐसे कई लोग कहते हैं कि धन माया है। एक्चुअली धन माया नहीं है, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का कमाने का तरीका, उसको स्टोर का तरीका और उसको यूज करने का तरीका, वो उसे अच्छा या बुरा बना देता है। और यहां से वो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की बात शुरू होती है, पवित्र धन या अपवित्र धन की बात शुरू होती है, और हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ना शुरू होता है। धन सेवक के रूप में अच्छा है, पर मालिक के रूप में खराब है। आप कहेंगे धन सेवक कैसे होता है, धन मालिक कैसे होता है? धन तो धन ही है, पर जीवन का अनुभव तो कहता है कि धन सेवक के रूप में अच्छी सेवा कर सकता है, पर मालिक के रूप में वो बड़ी परेशानियां ले आता है। एक एग्जाम्पल सुनाना चाहता हूं मैं, कि धन हमारा मालिक या हम धन के मालिक, उस इस एग्जाम्पल के बाद आप डिसाइड करना। एक संत थे, अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे, एक गांव से गुजर रहे थे। गांव में एक किसान गाय की रस्सी बांधकर अपने खेत पर ले जा रहा था। किसान आगे आगे था, गाय पीछे पीछे चल रही थी, रस्सी बंधी हुई थी उसके गर्दन से। संत रुक गया, शिष्य भी उसके पीछे रुक गए। संत ने कहा, ये नजारा देखो। शिष्यों ने देखा, भाई ये तो एक आम बात है, इसमें नई बात क्या है? गांव में तो ले ही जाते हैं किसान इस प्रकार से। शिष्यों को आश्चर्य हुआ, संत को आज क्या हो गया, ये क्या दिखा रहे हैं। फिर संत ने शिष्यों से एक सवाल किया कि आप ये बताइए कि ये किसान गाय को ले जा रहा है या गाय किसान को ले जा रही है, इसमें कौन मालिक है। अब शिष्यों ने पूछा, गुरुजी की शायद उम्र हो गई है इसलिए अभी ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं इनको। ये सामने दिखाई दे रहा है कि मालिक किसान है जो रस्सी पकड़ के गाय को ले जा रहा है, गाय उसकी सेवक है जो उसके पीछे पीछे जा रही है। तो सबने यूनोनोमियसली कहा कि मालिक किसान है और गाय सेवक है जो उसके पीछे जा रही है। संत मुस्कुराने लगे, कहा अच्छा कल्पना कीजिए कि किसान के हाथ से रस्सी छूट जाती है और गाय विपरीत दिशा में जाती है, फिर बताइए कौन किसके पीछे जाएगा। किसान के हाथ से रस्सी छूट जाती है और गाय विपरीत दिशा में जाने लगती है, तब कौन किसके पीछे जाएगा। शिष्यों ने कल्पना की तो कहा, गुरुजी वो तो गाय आगे आगे जाएगी, किसान पीछे पीछे जाएगा। तो कहा अब देखो कौन किसके पीछे है। तो धन के बारे में भी ये गलत फहमी हमारे पास रहती है कि हम धन के मालिक हैं, पर कई केसेस में धन हमारा मालिक बन जाता है। वो हमारे जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने लगता है, वो हमारी दिशाएं निर्धारित करता है, वो हमें संबंध निर्धारित करता है, सारी जो है ना डोर उसके हाथ में आ जाती है, धन के हाथ में आ जाती है, और तब थोड़ा जोखिम हो जाता है, देन देयर मे बी अ प्रॉब्लम। सो धन एक अच्छे सेवक के रूप में ठीक है, वो आपका बहुत हर प्रकार से धन सेवक के रूप में आपका बहुत भाग्य जमा कर सकता है, आपके जीवन में बहुत खुशियां आनंद ला सकता है, लेकिन जब वो मालिक बन जाता है तब वो हमारे लिए परेशानी का कारण भी बन जाता है। तो यहां आप जब इन सराज योग का अभ्यास करेंगे तब इसकी गहराई आपको और भी पता चलेगी कि कैसे हम आत्मा इस शरीर के भी मालिक हैं। जब इस शरीर के भी मालिक हैं तो इस शरीर से संबंधित सारी चीजों के हम मालिक हैं, और कैसे हम स्वराज अधिकारी बनकर मालिक बनकर इन साधनों का हम उपयोग करें जो हमारे जीवन में शांति प्रेम आनंद खुशी लेकर आए। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी धन कितना हो, कितना कमाए आखिर। आप कहेंगे कि क्या हम धन कमाना छोड़ दे, नहीं, धन कमाए हम बहुत कमाए, क्योंकि मैंने बताया ये एक ऐसा साधन है जिससे हम बहुत कुछ दुआएं भी कमा सकते हैं, जीवन में शांति प्रेम आनंद खुशी भी कमा सकते हैं इसी धन के द्वारा। लेकिन पेट के लिए जितना चाहिए ना, उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पेटियों के लिए तो जितना होता है कम पड़ता है। पेट के लिए जितना धन चाहिए उसमें कहीं दिक्कत नहीं आती है। आप सबको परमात्मा ने इतना काबिल बनाया है जो आप बहुत सहज रीति एक सुखी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन पेटियों के लिए जब हम कमाना शुरू करते हैं तब कितना भी कमाते हैं वो कम ही पड़ता है। तो यहां पर भी कहीं कहीं हमको समझना होगा कि हमको ये किसके लिए कमाना है, और ये हमारे जीवन में शांति आनंद खुशी प्रेम लेके आने वाला है क्या, ये इसके लिए एक बहुत बहुत जरूरी है। अभी हम परपेक्चुअल खुशी की बात कर रहे थे, अविनाशी शांति और खुशी की बात कर रहे थे। ये हमारा स्वधर्म है। इस स्वधर्म में रहकर हम जो कर्म करते हैं वो हमें ये आनंद खुशी प्रेम दे देता है। अभी ये स्वधर्म किसको कहते हैं और परधर्म किसको कहते हैं, क्या कहे गए? स्वधनम स्वधर्मम निधनम श्रेय पराधर्म भयावह। एक डाकू है। ये स्वधर्म और परधर्म की मैं आपको एक सरल युक्ति बता रहा हूं समझने के लिए कि किसको स्वधर्म कहते हैं किसको परधर्म कहते हैं, कौन हमारे ओरिजिनल गुण है। एक डाकू है, वो उसका एक छोटा गिरोह है, वो अपने गिरोह को बढ़ाना चाहता है, उसमें नए नए डाकुओं की भर्ती करता है। वो उनको क्या ट्रेनिंग देता है? वो जेब कैसे काटने का, मर्डर कैसे करने का, घर कैसे चोरी करना है तो कैसे कूद के जाने का, इस प्रकार की अलग अलग ट्रेनिंग्स वो सब देता है। इसके साथ साथ एक ट्रेनिंग और वो देता है। क्या देता है दूसरी ट्रेनिंग? कि जो भी लूट का माल हो वो आप ईमानदारी से मेरे पास लाने का। अभी ईमानदारी शब्द आ गया, कि ईमानदारी से वो सारा माल यहां पर लाने का, यहां जो मैं बंटवारा करूं और जो हिस्सा आपको दूं उसको बिल्कुल आपको बिना कोई क्वेश्चन किए खुशी से उसको स्वीकार करने का, आपस में झगड़ने का नहीं। अब ट्रेनिंग के दो पार्ट देखिए आप। एक पार्ट जो वो दूसरों के लिए चाहता है और एक पार्ट जो वो खुद के लिए चाहता है। तो जो व्यक्ति अपने खुद के लिए जो चाहता है ना, वो फिर आत्मा का स्वधर्म की ओर इंडिकेट करता है। खुद के लिए सत्यता, ईमानदारी, शांति, वो सब कुछ चाहता है। एक व्यक्ति जो बहुत गुस्सा करता है ना, वो दूसरे से बात करता है तो क्या कहेगा? मेरे साथ शांति से बात करने का। खुद बहुत गुस्सा कर रहा होगा लेकिन दूसरों को क्या सलाह देगा? मेरे साथ शांति से बात करने का। तो क्योंकि शांति आत्मा का स्वधर्म है, इसलिए वो लोगों से ये चाहता है। तो आत्मा की शक्तियों को पहचान कर उन शक्तियों के प्रयोग से जो हम धन उपार्जन करते हैं, वो धन हमारे जीवन में शांति, प्रेम, आनंद, खुशी लेके आता है। और यही लाइफ में हमको अल्टीमेट चाहिए। इसके विपरीत हम चाहे जितना धन इकट्ठा कर लें, आपके सामने कई एग्जाम्पल है, लेकिन वह धन संबंधों में भी टकराव पैदा करता है, संबंध विच्छेद करा देता है, संबंध दूर कर देता है, और स्वास्थ्य में भी वो प्रॉब्लम खड़ी करता है। पूरे जीवन में वह अशांति, दुख, निराशा भर देता है। इसलिए ये धन की इस गहन गति को हमें समझना बहुत जरूरी है। और आप 3 दिन में यहां जो राजयोग का अभ्यास करेंगे उससे आपके मन में एक शक्ति प्राप्त होगी कि हम पवित्र धन कमाने के लिए जो ये पॉजिटिविटी का रास्ता तय करना है उस पर हम चल सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया गुस्सा जो हमें नहीं करना चाहिए, आप भी, मैं समझता हूं सभी मानते होंगे कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, और जब जीवन में कभी गुस्सा किया होगा उस समय ये भी डिसाइड किया होगा कि नहीं अभी आज से नहीं करूंगा, क्योंकि आपस में रिलेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो क्या डिसाइड किया कि आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ऐसा रेजोल्यूशन आपने कई बार पास किया होगा। फिर भी क्या होता है,
थोड़े दिन बाद हो जाता है। सिगरेट पीने वाले, आपने देखा होगा कि सिगरेट के पैकेट पर क्या लिखा होता है, पहले तो लिखा होता था कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, अब तो क्या होता है फोटो भी साथ में छपने लग गए, और अधिकतर छोड़ना भी चाहते हैं। मैं तो समझता हूं 60-70% तो सिगरेट पीने वाले सिगरेट के जो डिसएडवांटेज हैं, नुकसान है, वो जानते हैं और जानते हुए उसको छोड़ना भी चाहते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने बहुत अच्छी बात की, सिगरेट छोड़ना वो क्या बड़ी बात है, मैंने 51 बार सिगरेट छोड़ी है। वो क्या बड़ी बात है, 51 बार सिगरेट छोड़ी, क्या मतलब है उसका, छोड़ते हैं और फिर पकड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर पकड़ते हैं। क्यों ऐसा होता है? जब हमको पता है कि इससे नुकसान हो रहा है, समझ है, देखा हुआ भी है रिजल्ट, फिर भी क्यों नहीं छूटती है? गुस्से से पता है कि नुकसान हो रहा है, नुकसान हो जाएगा, संबंध बिगड़ जाएंगे, छोड़ना भी है, फिर क्यों नहीं छूटता है? कभी आपने इस पे गौर किया कि हम जो करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में हमको पता है, दिल भी है कि मैं करूं, वो क्यों नहीं कर पाते? कहां वो प्रॉब्लम है जिसके कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं? एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो विल पावर नहीं है, वो संकल्पों में दृढ़ता नहीं है कि हम उस पर टिक सके, इसलिए वो 2 घंटा 2 दिन 2 मास तक तो चलता है, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। यहां आपको उस राजयोग में वो दृढ़ता मिलेगी। कल सवेरे के सेशन में आपको उस पावर ऑफ, जो सोर्स ऑफ पावर है, उसका आपको परिचय मिलेगा, और उसके द्वारा आप वो पावर अपने में ला सकेंगे, जो आप करना चाहें वो कर सकेंगे। जो पॉजिटिविटी वाला बताया, प्रॉब्लम तो यही है ना, दुर्योधन ने क्या कहा था, मुझे ये सब पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन फिर भी मैं अन्याय की तरफ ही प्रवृत्त होता हूं करने के लिए। यहां आपको वो पावर मिलेगी कि जिससे आप जो करना चाहे वो कर सकेंगे और जो नहीं करना चाहे वो नहीं करेंगे, वो पावर आपको यहां मिलेगी। तो मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और गुड विशेष हैं कि आप विशेष जब समय निकालकर, इतना वैल्यूएबल समय निकालकर 3 दिन के लिए यहां पधारे हैं, तो इस राजयोग को आप जरूर से अच्छी तरह से समझ के जाइएगा, ताकि आपके जीवन में पवित्र धन का आगमन शुरू हो जाए, और वो पवित्र धन आपको शांति, प्रेम, आनंद, खुशी लेकर आए। यही हमारी बहुत बहुत शुभकामना है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ललित भाई साहब का, जो इतने गहन टॉपिक पे इतने सरल तरीके से और उदाहरण देके हमें समझाया। और मैं समझता हूँ धन बहुत वैल्यूबल चीज है आज के समय में, और हम एज अ वकील और क्लाइंट के बीच में हमेशा इस तरह की खींचतान चलती रहती है, तो आज मुझे लगता है कि आप एनलाइट होंगे और जीवन में इसका प्रयोग करेंगे। एक बार फिर कर्तव्य ध्वनि से हम भाई साहब का धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। योग के बाद कुछ सूचनाएं हैं, आप 2 मिनट के लिए रुकिएगा जरूर।
कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। Thank you. कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो